नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रई नोमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के तनाहुन जिले में हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय दूतावास प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में तनाहुन में हुई बस दुर्घटना में प्रभावितों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने की घोषणा की है। प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष से 2,00,000 रूपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। प्रत्येक घायल को 50,000 रूपये मिलेंगे। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने कहा है कि इस बस दुर्घटना में 27 भारतीयों की मृत्यु हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की सफल यात्रा के बाद आज दोपहर स्वदेश लौट आए। यूक्रेन में प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच कीव में शिष्टमंडल स्तर की बैठक हुई। बैठक के दौरान यूक्रेन में सामुदायिक विकास परियोजनाओं, औषध नियंत्रण मानकों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूक्रेन और रूस को संघर्ष का समाधान तलाशना चाहिए। श्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि शांति स्थापित करने के लिए किसी भी प्रयास में भारत सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष सहित 7 लोगों को पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जा रहा है। इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए एकमात्र व्यक्ति संजय रॉय घटना से पहले पीड़िता के साथ रहे 4 डॉक्टरों और कोलकाता पुलिस के 2 स्वयंसेवकों का पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है। सियालदा की अदालत ने सीबीआई को पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दी थी। अदालत ने संजय रॉय को 14 दिन की हिरासत में जेल भेजा है। इस बीच कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर विशेष जांच दल ने मामले से जुड़े दस्तावेज कल सीबीआई को सौंप दिए। केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने केंद्र सरकार के सभी सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को दीक्षांत समारोह के लिए नया ड्रेस कोड तैयार करने को कहा है। मंत्रालय ने इस संबंध में केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों और चिकित्सा शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को पत्र लिखा है। मंत्रालय ने कहा है कि ये परिवर्तन औपनिवेशिक विरासत को छोड़ने और भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पत्र में कहा गया है कि विभिन्न संस्थान दीक्षांत समारोह के दौरान काले वस्त्र और टोपी का उपयोग करते हैं और ये परंपरा यूरोप में मध्य युग में शुरू हुई थी। मंत्रालय ने संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे राज्य के स्थानीय परंपराओं के आधार पर संबंधित संस्थान के लिए उचित भारतीय ड्रेस कोड तैयार करें। स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन समूह के सहयोग से भारत के पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 का चेन्नई से प्रक्षेपण किया है। 50 पीको उपग्रह और 3 क्यूब उपग्रहों को लेकर गए इस रॉकेट को मोबाइल ट्रेजेक्ट्री का इस्तेमाल कर प्रक्षेपित किया गया। इस रॉकेट ने लगभग 35 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ान भरी और ये कई प्रयोग करने के बाद कुछ ही क्षणों के भीतर पृथ्वी पर वापस लौट आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम की ये 113वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी इसका प्रसारण करेगा। दोईमुख विधायक नाबम विवेक ने रोज पंचायत खंड के तहत कल सोपो में एक नए पार्किंग शेड का उद्घाटन किया और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र को एक एम्बुलेंस सौंपी। नेपको के पारे जल विद्युत परियोजना द्वारा अपनी CSR कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के तहत प्रदान की गई एम्बुलेंस का उद्देश्य क्षेत्र में आपातकालीन प्रतिक्रिया को बढ़ाना है। इस अवसर पर श्री विवेक ने जोर देकर कहा कि समय पर चिकित्सा देखभाल की पहुंच जीवन को बचा सकती है और ये एम्बुलेंस स्वास्थ्य और केंद्र सोपो की आपात स्थितियों में तेजी से प्रतिक्रिया करने की क्षमता को बढ़ाएगी, जिससे हमारे समुदाय के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होगा। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।